હેલો હેલો
બરાબર
હેલો 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 આ રહી આવાજ
આ રહી
આ જાયેગી ધીરે ધીરે
હા
ધીરે ધીરે બળેગી કોઈ વાત નહીં મેં એક મંગલાચરણ થોડે સમય પહેલે મેને 10 કરણ કે સંદર્ભ મેં લિખા થા
જી
વો મંગલાચરણ કરતે હુએ અપન આગે બળેંગે
જી
લિખા હૈ મેરે પાસ મેં હમ બોલતે હૈં
જી
આ મુકુંદભાઈ અવાજ બહુ ધીરો છે
प्रभु को वंदन अगणित जो अपने में लीन हुए पंच परावर्तन को क्षय कर पंचम गति जग ये लोक के ज्ञाता दृष्टा अरिहंतों को कर वंदन ध्रुव स्वभाव दर्शावन वाले सिद्ध प्रभु को करूं नमन प्रभु ने जिसका आश्रय लेकर लोक शिखर पद पाया है उसी परम पद प्राप्ति है तो अब मेरा चित हुलसाया है जिस ज्ञायक पर दृष्टि कर जिन चार घातिया किए शमन उस स्वभाव का अवलंबन ले सब कर्मों का करूं वमन सर्वज्ञ कथित जिन आगम में कर्मों का सूक्ष्म विवेचन है जीव जुदा है कर्म जुदा है यह सिद्धांत अनुपम है पृथक पृथक हो बोध इन्हीं का अरुश्रद्धा जब दृढ़तम हो गुण स्थान आरोहण हो तब कर्म निर्जरा सत्वर हो वीर सेन अरुणेमी चंद्रादि आचार्यों के अनुसार 10 करणों का मर्म जानने का पुरुषार्थ जगा हितकार सत्ता बंध उदय उदीर्णा उत्कर्षण अरु अपकर्षण सर्व कर्म में हो उपशांत निधत्त निकाचित संक्रमण बंध आदि 10 करण कर्म में मैं उनसे निरपेक्ष सदा ये अपूर्व सत संतों द्वारा प्रतिपादित मम हृदय लहा कर्म हुए बलवान कभी ना मैं भूला निज बलवता निज शक्ति पहचान आज मैं पृथक करूं कर्मों सत्ता निज शक्ति पहचान आज मैं पृथक करूं कर्मों सता कर्मों के 10 करण ये प्रकरण अपना यहाँ चल रहा है ये कर्मों की 10 अवस्थाएं कर्मों में ही होती अपने में नहीं होती क्या माने ये अवस्थाएं कर्म की है चेतन की नहीं है बंध कर्म में होता है आत्मा में नहीं होता क्या सत्ता कर्मों की होती है आत्मा में नहीं उदय उदीर्णा कर्मों में होगा आत्मा में नहीं इसी तरह से संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण सब कर्म की अवस्थाएं हैं इसका मतलब जो काम कर्म में हो रहा है मैं उससे बिल्कुल भिन्न हूँ बंध कर्म का कर्म के साथ बंध आत्मा का कर्म के साथ होता ही नहीं है आत्मा कभी बंधा ही नहीं है आत्मा कर्म से बंध सकता ही नहीं है कैसी बात कर रहे हो साहब आप आत्मा कर्म से नहीं बनता है ऐसा कैसे होगा सच में आत्मा कर्म से नहीं बंधता आत्मा कर्म से बंधा है ऐसा कहा जाता है लेकिन सच में आत्मा कर्म से बंधता नहीं है साहब समझ में नहीं आई बात अरे बहुत सिंपल सी बात है कर्म कर्म से बंधते हैं कर्म आत्मा से कैसे बंधेंगे आत्मा अमूर्तिक और कर्म मूर्तिक आत्मा अस्पर्शी और कर्म में स्पर्श नाम का गुण तो जिसे छुआ नहीं जा सकता जिस आत्मा को उसे कर्म कैसे छुएंगे कैसे बांधेंगे समझ में आ रही है बात कर्म बंधता ही नहीं है आत्मा को कर्म बांधता नहीं है कर्म में ताकत नहीं जो आत्मा को बांध सके तो फिर साहब शास्त्रों में लिखा तो है ऐसा आप ये 10 करण की चर्चा कर रहे हो आखिर ये बंध की ही तो चर्चा है फिर क्या होगा देखो भाई बहुत सरल सी बात है कर्म पुद्गल परमाणु होने से उनका बंधन पुद्गल परमाणुओं के साथ ही होता है। बहुत स्थूल उदाहरण देकर के हम बात करते हैं, रस्सी रस्सी से बंधती है महेंद्र भाई
जी,
गाय से नहीं बंधती।
नहीं,
गाय को रस्सी से बांधा तो कौन बंधा, किससे बंधी, रस्सी से। तो गाय बंधी या नहीं बंधी,
नहीं।
गाय की गर्दन अलग है, रस्सी रस्सी से बंध रही है, ऐसी आत्मा अलग है, कर्म कर्म से बंध रहा है। ये कर्म जब कर्म से बंधता है तो बीच में आत्मा होने के कारण उपचार से ऐसा कहा जाता है आत्मा बंधा, सच में आत्मा को बंधन नहीं है। इसलिए बंध आदि अवस्थाएं, ये 10 अवस्थाएं कर्मों की है, ये अवस्थाएं पुद्गलों की है, और पुद्गलों की इन अवस्थाओं को हम समझ रहे हैं, है ना। कल हमने 10 नाम पढ़े थे, 10 नाम आपको याद होंगे, उम्मीद करता हूँ याद होने चाहिए। पहला शब्द था बंध, बंध कर्म का कर्म के साथ में, बंध माने जुड़ना, बंध माने एक क्षेत्राव का संबंध, वो बंध है। दूसरा था सत्ता, सत्ता माने उनका निश्चित समय तक आत्मा में या आत्मा के समीप आकर के ठहरना, ये है सत्ता। जो भी कर्म बंधते हैं, बंधने के बाद वे सत्ता में चले जाते हैं। कर्म का बंधन हुआ और कर्म का बंधन होकर के वे कर्म सत्ता में चले गए। अब लेकिन बड़ा गजब का चमत्कार ये है कि जो चर्चा हम उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण की करने वाले हैं, ये उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण ये सत्ता में पड़े पड़े हो जाता है। इसका मतलब फल मिलने के पहले हो जाएगा काम। इसका मतलब व्यक्ति ने पाप किया और पाप करने का फल भोगने का टाइम आए, उसके पहले पहले वो पाप पुण्य में बदल जाए। मेरे को बहुत लोग मिलते हैं महेंद्र भाई समाज में, वो ऐसी बातें करते हैं, अरे पंडित जी हमने तो बहुत पाप किए, हमने बहुत पाप किए, क्या बताएं पंडित जी, आपको पता नहीं है हमने कैसे कैसे पाप किए हैं, कुछ नहीं हो सकता हमारा तो, आखिर उन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा ना, इतने पाप हमने किए, न मालूम क्या क्या नहीं किया हमने, सप्त व्यसनों में पारंगत रहे हम, खूब पाप किए। हम कहते हैं कोई बात नहीं, क्या डरने की जरूरत नहीं
है, वो
क्या, क्योंकि जो कर्म आपने उस समय किए थे, जो काम आपके द्वारा किए गए, जो खोटे कार्य किए गए, वो भूतकाल में किए गए थे। इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। आपने कल कहा था कर्म रिश्वत नहीं लेते, कर्मों में रिश्वत तो नहीं चलती, लेकिन कर्म इतने ईमानदार होते हैं कि आपके बदलते हुए परिणामों को देख करके अपने फल को हल्का कर देते हैं। इतने ईमानदार हैं, उन्होंने आपकी नीयत देख ली, कर्म नीयत पकड़ते हैं। जिस समय आपकी नीयत खोटी थी, आप सत्य व्यसनों में लिप्त थे, उस समय खोटी नीयत के कारण वे बहुत जटिलता से बंधे थे, और जब हमारी नीयत संभली थोड़ी सी एक तत्व ज्ञान के अवलंबन से, एक जनवाणी के अवलंबन से, शास्त्रों के आधार से, जब थोड़ा सा हमारा जीवन बदलता हुआ दिखाई दिया, तो कर्मों को लगा कि यार ये व्यक्ति बदल रहा है, इसकी सजा कुछ माफ कर देनी चाहिए। होता है ऐसा, दुनिया में भी होता है, लोक में भी होता है, प्रकृति में भी ऐसी व्यवस्थाएं देखी जाती है। एक व्यक्ति को जेल हो गई, उम्र कैद की सजा सुना दी गई, लेकिन जेल में उस व्यक्ति का व्यवहार देखा, उसकी सरलता देखी, उसका बदलता हुआ जीवन देखा, तो उसकी सजा माफ कर दी गई, उसकी सजा कम हो गई। ऐसा हो जाता है,
हो जाता है।
जब यहाँ ऐसा हो जाता है तो अलौकिक प्रकृति में ऐसा नहीं होगा। ये न्याय है, यहाँ अन्याय कहीं नहीं है। आपके वर्तमान परिणामों के भरोसे भूतकाल में किए हुए पाप संक्रमित हो जाते हैं, अपकर्षण हो जाता है उनका, सावधान रहो। ये बहुत बड़ी पावर, ये ताकत हमारे पास में है, ये इतनी बड़ी चीज हमारे को मिल गई है, हमें उसका पता नहीं है और लाभ नहीं ले रहे हम। रोजाना भाव पूर्वक जनवाणी सुनने से पूर्व के बंधे हुए कर्म सब ऑटोमेटिक बदलते रहते हैं, सब बदलते रहते हैं, तब में अपकर्षण 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 होता है। अपकर्षण माने गिरावट आती रहती है, फल मिलेगा उसका कोई बात नहीं, लेकिन बहुत कम मिलेगा, बहुत हल्का मिलेगा, नहीं के बराबर मिलेगा।
थोड़ी का घा सुई का बराबर,
हाँ चूली पे चढ़ाया जाना था और सूल लग करके रह गया, चूली पे चढ़ाना समझिएगा, फांसी पे, फांसी के तख्ते पे लटकाना था और फल क्या मिला उसका, कांटा लग करके रह गया। दो मित्र थे, दोनों मित्र अच्छी दोस्ती थी, शाम का समय था, 7:30 बजे का समय, 6 बजे का समय मान लो, 5:30-6 का समय मान लो, दोनों मित्र आमने सामने टकराए रास्ते में। एक ने दूसरे से कहा कि चल यार मंदिर चलते हैं, क्या कहा उसने, मंदिर चलते हैं। कि नहीं नहीं यार क्या मंदिर, तू भी कौन सा 16वीं सदी में जा रहा है, 21वीं सदी में चल रही है दुनिया, क्या मंदिर वंदिर सत्संग की प्रवचनों की बात करता है, ये कोई उम्र है ये सब करने की, मैं तो पिक्चर देखने जा रहा हूँ, ये प्रवचन तो रोज ही चलते रहते हैं, चल मेरे साथ पिक्चर देखने। बोले नहीं भैया मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो पिक्चर देखने नहीं जाऊंगा, आज तो बाहर से पंडित जी आए हैं, मैं तो उनका प्रवचन सुनने जाऊंगा। ठीक है, वो पिक्चर देखने चला गया, ये प्रवचन सुनने के लिए आया। प्रवचन सुनकर के जब वापस जा रहा था तो वापस जाते जाते क्या, इधर से ये प्रवचन सुनकर के वापस लौट रहा था और उधर से वो फिल्म देख करके वापस लौट रहा था। रास्ते में आते आते प्रवचन सुनकर के आने वाले के ठोकर लग गई, ठोकर लग गई, वो चोट आ गई, और उधर से सामने से आ रहा था पिक्चर देख करके, उसने कहा क्या हुआ, अच्छा धर्म करके आया है, मिल गया ना फल तेरे को धर्म करने का, ये क्या धर्म करके आया, ये धर्म का फल ये, धर्म करने से तो अच्छा काम होना चाहिए था। चुप रहा बेचारा, कुछ नहीं बोला, क्योंकि प्रवचन तो किसी और विषय पर था, ये बात तो समझ में नहीं आई कि बात तो सही कह रहा है। और उस व्यक्ति ने कहा जो पिक्चर देख के आया था कि देख पिक्चर तो देख के आया ही हूँ, मजे तो किए ही है, और देख तू मेरे को रास्ते में पड़ा हुआ $100 का नोट भी मिल गया। आश्चर्य हुआ, पाप करने वाले को अच्छा काम दिखाई दे रहा है क्या, और धर्म करने वाले के साथ में ये हालत होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ जची नहीं बात, कोई बात नहीं, जो भी हुई परिस्थिति। दूसरे दिन सुबह वो मुनिराज के पास में गया प्रवचन सुनने वाला, और उसने जाकर के मुनिराज से पूछा कि महाराज ये कैसी बात है, ये बात कुछ जच नहीं रही है, हमारे को समझ में नहीं आ रही है। तो महाराज ने अपने दिव्य ज्ञान से देख करके बतलाया कि अरे तुझे पता है तेरे प्रवचन सुनने के परिणामों से क्या हुआ, तेरे साथ में इतनी बड़ी दुर्घटना घटने वाली थी क्या, कि तू बिस्तरों पर वर्षों तक पड़े रहता, लेकिन प्रवचन सुनने के उज्जवल परिणामों से वो सारा पाप कर्म आकर्षित होकर के इतना सा रह गया कि एक ठोकर लग करके खरों जाकर के रह गई। हमें पता नहीं लगता है अंदर के अंदर कैसे कर्म बदल जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, पाप कर्म बहुत हल्का होकर के उदय में आता है। हम सोच रहे हैं धर्म किया, अनेक बार ऐसे प्रसंग दिखते हैं धर्मात्माओं के ऊपर संकट आते हुए दिख रहे हैं, धर्मात्माओं पे संकट ज्यादा ही दिखते हैं, कुछ ज्ञानियों पे संकट दिखते हैं। टोडरमल जी को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया, बनारसी दास जी की स्थिति देखो आप, अंत समय में हाथ नहीं हिला सकते थे, ऐसी स्थिति में थे। गुरुदेव देखो आप, अंत समय में कैंसर हो गया। श्रीमत जी की स्थिति देखो, आयु ही कितनी कम रही, इतना सा जीवन, अंत समय में शरीर भी बहुत शिथिल हो गया था। तो कैसी परिस्थितियां बनती है ज्ञानियों के साथ में, मुनिराजों के जीवन में देखते हैं तो कितने उपसर्ग दिखते हैं, तो ज्ञानियों के ऊपर ही इतने संकट आते हैं। अरे भाई तुम्हें जो संकट दिखाई दे रहे हैं ये संकट कुछ नहीं है, वो बहुत बड़ा संकट बहुत कम होकर के सामने आया है। कि चलो कोई बात नहीं, मेरा संकट तो कम होकर के सामने आया है, लेकिन उसे जो $100 मिल गया पाप करने के फल में, अरे पिक्चर देखने नहीं जाता तो उस रास्ते पर जाता ही नहीं, उसे मिलता भी नहीं, और वो पाप किया और वो मिल गया, कि उसे बहुत प्रॉफिट होना था क्या, जो $100 में निपट गया। बोलो ये बात हमारे को समझ में नहीं, हमें तो चमत्कार ऐसा दिखता है महेंद्र भाई, हम मंदिर जा रहे हैं पूजन करने के लिए रोज जाते हैं मंदिर। एक दिन कुछ तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गए और तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, कुछ टेस्ट हुए वहाँ और डॉक्टर ने टेस्ट देख करके कहा, रिपोर्ट देख करके कहा कि भैया तुम्हें तो कैंसर के परमाणु फूटते हुए दिखाई दे, कैंसर हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लॉकेज हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, कई तरह की प्रॉब्लम उन्होंने बतला दी। अब मंदिर तो जाना ही था हमारे, अब मंदिर गए, मंदिर जाकर के ऐसा लगा हमारे को यार काश ऐसा हो जाए, आज मैं पूजन करके आ रहा हूँ, प्रवचन सुन करके आ रहा हूँ, काश मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, तब मैं मानू, तब मुझे भरोसा हो कि ये जैन धर्म कुछ चमत्कारिक धर्म है। सोचते हैं लोग ऐसा, मंदिर में आज पूजन किया, आज विधान किया है हमने, तो इस विधान के फल में कुछ तो चमत्कार होना चाहिए, और असली चमत्कार तब मानूंगा मैं इस जिनवाणी का कि मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। होगी कि नहीं होगी?
नहीं होगी,
होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, इसमें अभी क्या कर सकते हैं इसका, लेकिन इसे ऐसा लगता है। और कदाचित ऐसा हो जाए, मान लो क्या कि दूसरे दिन दूसरे डॉक्टर को दिखाए और वो दोबारा टेस्ट करे और कुछ नहीं निकले, तो इसे लगता है चमत्कार हो गया। जबकि हुआ क्या था, हुआ ये था कि पिछले दिन जो रिपोर्ट बतलाई गई थी वो गलती से गलत व्यक्ति की रिपोर्ट तुम्हें सुना दी गई थी, इसे लगता है चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। ऐसा कुछ संकट आए तो इसे चमत्कार होता हुआ दिखाई देता है। हम कह रहे हैं सुनो भाई, ये जो तुम्हें चमत्कार दिख रहा है ना, ये चमत्कार दिख रहा है, अभी तुम्हारे अंदर में कैंसर के परमाणु चल रहे हैं, तुमने डॉक्टर को दिखाया नहीं है क्या, और अंदर में जो कैंसर के परमाणु चल रहे थे, ये तत्व ज्ञान के अभ्यास से वो कैंसर के परमाणु अपने आप बदल गए, न तुम्हें होने का पता लगा और न तुम्हें ठीक होने का पता लगा, अंदर के अंदर बदल जाती है चीज, ये संक्रमण है। कैसा संक्रमण हो जाता है बोलो, अंदर के अंदर जब चीज बदल जाती है तो हमें पता ही नहीं लगता है, हमें तो मालूम ही नहीं है कितना बड़ा संकट हमारे ऊपर आने वाला था। ऐसी परिस्थितियां अनेक बार बनती है ना, महापुरुषों के ऊपर कोई संकट आने वाला हो, जैसे मान लो एक मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे थे, कोई उपसर्ग करने के लिए आ रहा था और बीच में किसी ने आकर के बचा लिया, अब मुनिराज को तो पता ही नहीं है, संकट आ भी रहा था और बच भी गया, ऐसी परिस्थिति बनती है ना, वो ध्यान अवस्था में बैठे थे उनको पता ही नहीं है, संकट आ भी गया और बाहर से चला भी गया, आपके ऊपर बहुत बड़ी आफत आने वाली थी, आप घर में बैठे हो, आपको नहीं मालूम बाहर तक आई और बाहर तक आकर के किसी दूसरे ने निपटा दिया और वो निपट गई, आप सोच रहे हो हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, काम तो हो रहा है कर्मों के द्वारा, इन परिणामों से काम तो बहुत बड़ा हो रहा है, पूर्वबद्ध बंधे हुए कर्मों में, पहले के सत्ता में पड़े हुए कर्मों में उथल पुथल मच रही है, जिनवाणी की चर्चा सुनने से, कूड़ा कूड़ी सागरों के कर्म, कूड़ा कूड़ी सागरों के, 70 कूड़ा कूड़ी महेंद्र भाई, 20 कूड़ा कूड़ी, 30 कूड़ा कूड़ी, 40 कूड़ा कूड़ी, उन कर्मों की स्थिति ये विचार मात्र से अंत कूड़ा कूड़ी रह जाती है, समझ गया, कूड़ा कूड़ी से अंत कूड़ा कूड़ी क्या मतलब है, 1 करोड़ को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो, 1 करोड़ कितना होता है, 10 मिलियन, 10 मिलियन को 10 मिलियन से मल्टीप्लाई करो तो 100 मिलियन, क्या बात कर रहे हो, 10 मिलियन को 10 मिलियन से मल्टीप्लाई,
1000 मिलियन,
बस 14 बिंदी आएगी क्या, 16 आएगी, 10 को 10 से करना है, 1 करोड़ को 1 करोड़ से 14 बिंदी आएगी, बोलो आप, अपने को 10 को 10 से तो कर दिया, लेकिन वो 7 बिंदी लगेगी ना आगे, कितना लंबा है वो कोड़ा कोड़ी, इतने सागर, और वो घट करके क्या हुआ कि 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर रह गया, 14 डिजिट वाला जो मैटर था वो 14 डिजिट वाला मैटर घट करके कितना 7 डिजिट के अंदर अंदर अंत कोड़ा कोड़ी, अरे कुछ सागरों के अंदर बदल गई वो स्थिति, इसका नाम अपकर्षण है। और ये कब होता है अपकर्षण, सिर्फ क्षयोपशम से नहीं, सिर्फ विशुद्धि से नहीं, देशना से नहीं, और देशना के बाद प्रायोग्य से ये चमत्कार होता है। क्षेत्रक्षम तो है हम सबके पास में। आप चाहते हैं ऐसा चमत्कार आपके साथ में हो, आप चाहते हैं आपके द्वारा बंधे हुए कर्म सागरों तक भोगने नहीं पड़े हमारे को, 10-20 सागरों तक, 50 सागर तक हमारे कोई कर्म के फल नहीं भोगने पड़े, चाहते हैं ना हम सब? अरे हम नहीं भोगना चाहते। देखो बांधते समय तो हंसते हंसते बांधता है, भोगने का समय आता है तो रोता है। जब ये पाप कर्म का उदय आता है ना, कैसे सागरों तक कैसे आता है महेंद्र भाई उदय? जैसे समझो, अभी छोटी सी बात बतलाऊं मैं आपको, एक सेकंड की असावधानी के कारण पैर फिसल करके जो फ्रैक्चर हुआ, अब वो एक सेकंड का काम हुआ ना, और फल कितने समय तक है? 4 महीने तक लटकाए पाऊ, मतलब 4 महीने तक कंटिन्यू चल रहा है ना उसका फल। काम कितना सा था? 1 सेकंड की चूक, और फल कितना? 4 महीने तक एक पैर ऐसे टांग करके बांध करके लटका रखा है, ऐसे हिलना डुलना बंद है 4 महीने तक। 4 महीने नहीं, जिनवाणी की विराधना के परिणामों से। ये पढ़ना नहीं चाहता हूँ मैं, ये सुनना नहीं चाहता हूँ। अरे बहुत कर देखे हैं धर्मात्मा, कर लो तुम धर्म, तुम कर रहे हो ना, तुम कर लो। इन परिणामों से जो कर्म बंधता है वो टांग 40 दिन तक नहीं, क्या 4 महीने तक नहीं, 4 साल तक नहीं, कोड़ा कोड़ी सागरों तक पैर लटका रहेगा। ऐसे अंदाजा है आपको कैसे कर्म का उदय आता है? कोड़ा कोड़ी सागरों तक पैर लटका रहेगा, इतनी तो जिंदगी नहीं दिखाई देती है। अरे ऐसी अवस्थाओं में चला जाता है जहाँ पृथ्वी का एक हो जाता है, जहाँ जल का एक हो जाता है, 1000 वर्षों की आयु होती है, और आयु पूरी करने के बाद में फिर उसी में जन्म ले लेता है और 1000 वर्षों तक वही टंगा रहता है। ये झाड़ दिख रहे है ना, 1000 वर्षों तक वही काम दिखाई देता है। क्या क्या बात है बोलो आप, समझ में नहीं आती है हमारे को। ये फल भोगना पड़ता है हमारे को, हिमालय पर्वत 1000 वर्षों तक। मुकुंद भाई 21,000 वर्ष की आयु होती है, 21,000-22,000 वर्ष की आयु पृथ्वी का एक की। अब 22,000 वर्ष तक वो वहां रहने के बाद जीवन पूरा हो गया, अब मर करके कहीं दूसरी जगह जन्म लेगा तो कहा फिर दोबारा पृथ्वी का एक में आ जाता है, और फिर 10-20-25,000 वर्ष तक, 20,000 वर्ष तक वो वहां टिका रहेगा। फल भोग रहा है, कर्म का फल भोग रहा है, कर्मों के फल भोगने को मिलेंगे भाई साहब। इन कर्मों के फल को नहीं भोगना चाहते हो, प्रायोग्य प्रयोग, प्रायोग्य लब्धि को मैं कहता हूँ प्रयोग, ये प्रयोग लब्धि है। प्रयोग लब्धि मतलब क्या है? क्षयोपशम, क्षयोपशम तो है सबके पास में, क्षयोपशम माने बुद्धि ज्ञान सबके पास में है। ज्ञान का प्रयोग जिनवाणी सुनने में करे तो मिली विशुद्धि, ज्ञान का प्रयोग इधर करे जिनवाणी सुनने में उसका मतलब है विशुद्धि हुई है, और ज्ञान का प्रयोग यदि विषय कषाय में करे तो विशुद्धि नहीं है, तीव्र कषाय है, परिणामों की विशुद्धि भी हो गई, जिनवाणी सुनने के लिए आ गया, तत्वोपदेश देने वाले वितरागी संतों का उपदेश भी मिल गया, देशना भी मिल गई। अभी भी काम बहुत बड़ा नहीं हुआ है, अपकर्षण तो होगा पाप कर्मों का, उत्कर्षण तो होगा साता वेदनीय का, जो प्रॉफिट इतना सा होना था वो बूम लगता है एकदम, उसमें जंप मारता है एकदम, माने समझ लो आप फुटपाथ पर रहने वाला व्यक्ति एकदम झटके से महलों में पहुंच जाता है, राज्य मिल जाता है उसको। ऐसा संक्रमित और ऐसा उदय एकदम बदलता है कि भिखारी व्यक्ति भीख मांगता हुआ दरवाजे से अंदर आया राज्य में, और वहां के मंत्रियों ने उसे पकड़ा और पकड़ करके ले जाकर के राजगद्दी पर बिठा दिया कि आप आज से हमारे राजा हैं। ऐसा बदल जाता है उदय, इतना तीव्र गति से बदल जाए। कब बदलेगा? क्षयोपशम के बाद विशुद्धि, विशुद्धि के बाद मिली देशना, देशना में भी काम यद्यपि बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन जिस अंतः कोड़ा कोड़ी पने की हम बात कर रहे हैं, अपकर्षित होने की जब हम बात कर रहे हैं इन कर्मों के, ये स्थिति बनती है प्रायोगिक लब्धि के काल में। ये सारी प्रायोगिक लब्धि क्या चीज है, इसके बाद तो हम कुछ करते ही नहीं है। क्षयोपशम था महेंद्र भाई हमारे पास में, विशुद्धि थी, सुनने के लिए आ गए और सुनने के बाद में पल्ला झाड़ के चले गए, बस कुछ इसके बाद क्या करते हैं बताओ? असली काम तो इसके बाद होना है, क्षयोपशम विशुद्धि और देशना के बाद असली काम होना है मुकुंद भाई, काम तो उसके बाद होगा। और हमने सोचा काम पूरा हो गया, सात दिन का शिविर लगाया था, काम पूरा हो गया। काम पूरा नहीं हुआ, काम तो शुरू हुआ है आज से। क्या क्या काम शुरू हुआ है? कि सात दिन में जो बात सीखी है उस बात को प्रैक्टिस में, प्रक्रिया में, जीवन में उतारने का काम शुरू करना है। ये काम की शुरुआत का दिन है, समापन का दिन नहीं है। हमारे यहाँ ग्रंथों की शुरुआत नहीं, क्या ये समापन नहीं होते, शुरुआत होती है। ऐसा है, संपन्नता नहीं होती, गाथा कभी पूरी नहीं होती। आत्म सिद्धि पूरी होगी, कब होगी पूरी? जब सिद्धि हो जाएगी। क्या कब होगी मुकुंद भाई पूरी? देखा पांच बार पूरी कर, कहां पूरी, कितने अभी तो पढ़ी है हमने उसको, सिर्फ हमने उसको सिर्फ पढ़ा है। ग्रंथों का समापन कभी नहीं होता, जनवाणी का समापन नहीं होता, इसकी शुरुआत होती है, इसका उद्घाटन होता है। ये महाभाग्य से मिल गया अवसर हमारे को, जनवाणी सुनने का अवसर। पांच दिन में जो बात हमने सुनी है, अब उस बात को सुनने के बाद अब क्या करें? बोले प्रयोग करो इसका, ये कहलाएगी प्रायोग्य लब्धि। इसका मतलब सुनने के बाद में किया जाने वाला चिंतन। क्षयोपशम विशुद्धि देशना, मैं कभी कभी ऐसा भी कहता हूँ, इन तीन के लिए आपने कुछ नहीं किया, ये तीन आपको मुफ्त में मिल गए, इन तीन में आपका कुछ योगदान नहीं है। क्या मतलब? नहीं समझ में आई बात? देखो बहुत मोटा मोटा समझाता हूँ स्थूल दृष्टि से। क्षयोपशम ज्ञानावरणी कर्म के, ज्ञानावरणी कर्म का मंद उदय होगा, क्षयोपशम अपने आप मिल गया। अब इसमें आपको क्या लेना देना? पूर्व में कुछ कर्म किए थे अच्छे, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो गया, बुद्धि अच्छी हो गई, क्षयोपशम हो गया। आपका वर्तमान में तो कुछ पुरुषार्थ नहीं है ना, विशुद्धि। चारित्र मोहनीय कर्म का मंद उदय आता है तो परिणाम कुछ निर्मल हो जाते हैं। अरे तीव्र से तीव्र कषायी जीवों के भी चारित्र मोहनी का मंद उदय आता है तो परिणाम शांत दिखते हैं। हत्या करने वाले लोग, बूचड़ खाने, कत्ल खाने चलाने वाले लोग भी ऐसे मंद परिणामी कभी कभी हो जाते हैं कि किसी मरते हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा देते हैं। कषायी की मंदता, क्या दम है इस कषायी की मंदता में? चारित्र मोहनी कर्म के उदय से हुई, क्षयोपशम ज्ञानावरणी कर्म के मंद उदय से हुआ, विशुद्धि चारित्र मोहनी के मंद उदय से हुई, और ये जो देशना मिल रही है ना, ये देशना भी सातावेदनी कर्म के उदय से है। क्या आपने पूर्व में कुछ पुण्य किए होंगे जिस वजह से जनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है? ये जनवाणी सुनने को नसीब नहीं होती, लोगों को नसीब नहीं होती। जिसका भाग्य उदय होता है उसको जनवाणी सुनने को नसीब होती है, अभाग्य होते हैं जिनको जनवाणी सुनने को नसीब नहीं होती। कितने लोग हैं बतलाओ मेरे को, यहाँ मयामी में जैनियों की कमी है क्या? कितने जैन हैं? दिगंबर श्वेतांबर बहुत जैन है ना, अच्छा सेंटर है। इतने जैन परिवार होने के बावजूद भी कितने लोगों को सुनने को नसीब होती है? 200-500 मेल भेजते हो आप, अब उन 500 मेल में से कितने लोग सुनने के लिए आते हैं? पढ़ लेते हैं, हाँ चल रहा है कार्यक्रम, जेल सेंटर में कोई कार्यक्रम चल रहा है, ठीक पता लग गया कि सुनने के लिए। अरे किसके पास टाइम है यार इन सब बातों के लिए? भाग्य होगा तो मिलेगी सातावेदनी देशना लब्धि, सातावेदनी कर्म के उदय से देशना लब्धि मिलेगी, क्षयोपशम विशुद्धि देशना। अब असली काम क्या होना है? यहाँ तक तो पिछला काम था, पिछला किया हुआ काम था, पिछले जन्मों का काम था, नया क्या किया आपने? हम तो सोच रहे हैं बहुत कर लिया था, बहुत कर लिया हमने, मंदिर चले गए सुन लिया हमने, प्रवचन सुन लिया सुन करके आ गए, बहुत कर लिया था हमने। क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया, काम तो अब करना है। क्या करना है काम? अब जो बात सुनी है उसके बारे में शांत चित्त होकर के बैठो, आंख बंद करके। ओहो क्या बात कही गई है भाई, रजत स्वरूप है भाई साहब, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। चिंतन करो इसका, क्या ये सच्ची बात है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं। मैं तो घर चलाता हूँ, मैं तो समाज चलाता हूँ, मेरे हिसाब से तो सब चलते हैं, सब मेरे निर्देशन में चल रहे हैं। आप कह रहे हो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, विचार करो, चिंतन करो। अब जब चिंतन के लेवल पर ये बात चलती है तो होता है वो प्रयोग, और वो जब प्रयोग होता है तो इस प्रयोग के दम पर जो आप सुबह 4 बजे उठ करके करते हैं, ते प्रयोग के दम पर, उस चिंतन के बल पर अंते कूड़ा कूड़ी सागर अब अंदर में चल रही है, धमादम धमादम। मैं कई बार कहता हूँ ऐसा, ऐसी धूल उड़ती है मुकुंद भाई, कर्मों की धूल उड़ती है, धज्जियां उड़ती है ऐसे कर्मों की, के साल दो साल में आपके यहाँ तो धूल ही नहीं आती है, आती होगी थोड़ी बहुत, तो साल दो साल से बिछा हुआ कोई बिस्तर था, दरी बिछी थी, उसको उठा करके बाहर ले जाकर के जब झाड़ते हैं ना, तो जो धूल उड़ती है जैसी, ऐसी धूल ये जिनवाणी की चर्चा सुनने और विचार करने के काल में कर्मों की उड़ रही है अंदर, ये दिख नहीं रही है। मैं सही कहता हूँ, अभी यदि कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज यहाँ आकर के बैठे हैं, क्या भाई साहब अवधि ज्ञानी मुनिराज रमेश भाई अभी यदि आपके यहाँ आकर के बैठे हैं और आपको देखे अभी वर्तमान में, तो उन्हें लगेगा यार ये क्या हो रहा है रमेश भाई के साथ, इनके बंधे हुए सारे कर्म उड़ रहे हैं, जड़ रहे हैं, ये कर्म प्रकृतियां सब बदल रही है, ये कैसे चमत्कार हो रहे हैं, ये इनको रमेश भाई को पता नहीं लग रहा कितना बड़ा काम हो गया है। जिस घर में जिनवाणी की चर्चाएं चलती हो, क्या समझ लीजिए आप, उस घर में अपार सुख शांति का वास होने वाला है, ये इस बात का प्रमाण है। ये इसके लिए सद्भाग्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, भाग्यशाली है ये परिवार। जिस घर में जिनवाणी का सम्मान नहीं है, उसके लिए आचार्यों ने प्रयोग किया शमशान के समान है वो घर, वो घर शमशान के समान है जिस घर में जिनवाणी नहीं है, जिस घर में जिनवाणी की चर्चा नहीं है, शमशान कहकर के पुकारा है, मुर्दा घर कहकर के पुकारा है उसे। चलते हुए शव शब्द का प्रयोग किया है इस पहाड़ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने। जो जिनवाणी की चर्चा नहीं करता है और तत्व विचार नहीं करता है, वो व्यक्ति चलता फिरता हुआ मुर्दा है, मृत शरीर है वो, जिसको ये चर्चा सुहाती नहीं है। भाई साहब साधारण बात है, क्यों कह रहे हैं भाग्यशाली, पता है आपको हम आपको भाग्यशाली क्यों कह रहे हैं? अरे पंडित जी बिजनेस तो ठप हो रहा है और आप कह रहे हो भाग्यशाली है, आपके भाग्यशाली कह रहे हो, आपको क्या पता हमारी क्या पोजीशन चल रही है, आप कह रहे हो भाग्यशाली है, हमारी तो बनती नहीं है आपस में और आप कह रहे हो भाग्यशाली है, क्या लोग हमारी सुनते नहीं है, आप कह रहे हो भाग्यशाली है, शरीर ने काम करना बंद कर दिया है और आप कह रहे हो भाग्यशाली है, उठने बैठने में परेशानी होने लग गई और तुम कह रहे हो भाग्यशाली है। अरे बस बस इन बातों को मत देख, तू जानता है भाग्य किसे कहते हैं, हमें ये दिखाई दे रहा है कि तू अल्पकाल में सिद्ध परमात्मा बनने वाला है, ये हमें भाग्य दिखाई दे रहा है। ये जो जिनवाणी की चर्चा चल रही है, ये चर्चा तेरे कान में पड़ेगी, तेरे कान में पड़ेगी तो तेरे कानों के माध्यम से हृदय में उतरेगी, और हृदय में उतरेगी तो तेरे कर्मों में उथल पुथल होगी, और कर्मों में उथल पुथल होगी और उनमें अपकर्षण और संक्रमण यदि हुआ तो मंद उदय आएगा, मंद उदय आएगा तो उत्साह और बनेगा, उत्साह और बनेगा तो और उदय मंद होगा, और धीरे धीरे उस कर्म का अभाव होकर के मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ेंगे। सिद्ध समान सुख का अनुभव करने वाला दिख रहा है अल्पकाल में, इसलिए कह रहे हैं भाग्यशाली है। कितना भाग्यशाली है, लोग कहते हैं अरे मेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है, पता है क्यों? माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, पता है पंडित जी, और वो बिल गेट्स की जो टॉप 20 लोगों की टीम है उस टीम में है, कितना भाग्यशाली है सोचो। सुन बिल गेट्स की टीम में है तो वो भाग्यशाली है, और बिल गेट हो जाए तो हम कह रहे हैं यहाँ उस भाग्य की बात कर रहे हैं कि पहले तो तुम जिनवाणी की चर्चा सुनकर के सिद्ध परमात्मा की टीम में शामिल हुए, अरहंतों की टीम में शामिल हो गए तुम, उनके स्पेशल लोगों में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अनंत अनंत जीवों में से बहुत कम जीव हैं जो डायरेक्ट जिनवाणी माँ की चर्चा को सुनते हैं, तीर्थंकर परमात्मा की बात को सुनते हैं और उनसे रूबरू होते हैं। बोलो कितने कम लोग हैं, जैसे तू कह रहा है ना इतना भाग्यशाली है कि मेरे को 15 मिनट का टाइम दिया था बिल गेट्स ने, डायरेक्ट मीटिंग हुई 15 मिनट, हम कह रहे हैं डायरेक्ट बात हो रही है अनंत परमात्मा से, कौन भाग्यशाली है बोल, 15 मिनट का समय दिया ओबामा ने, क्या जब प्रेसिडेंट था उस समय 15 मिनट उनके साथ में सामने सामने बैठ करके चर्चा की मैंने, कितना भाग्यशाली हूँ मैं, 15 मिनट तू साक्षात अरहंतों से चर्चा करे ऐसा भाग्यशाली है। कौन से भाग्य की बात कर रहा है? और बात करूं मैं, यदि इस चर्चा को सुनकर समझकर यदि जीवन में उतारता है तो तेरे को वो आनंद आएगा जिस आनंद का उपभोग अनंत परमात्मा करते हैं,
बाबा
वो क्वालिटी। ये जो प्रोडक्ट बेचने वाले लोग मिलते हैं ना दुनिया में बहुत, क्या ये अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बतलाते हुए क्या कहते हैं, पता है हमारे यहाँ कौन सा चावल आता है, वो कुछ ओबामा के यहाँ जाता है। क्या हम कौन सी क्वालिटी वाली चीज बेच रहे हैं? दुकान पर कोई ग्राहक चढ़ करके आया, आपने क्या कहा? भाई साहब क्वालिटी ऐसी दूंगा आपको, ओबामा इस क्वालिटी को यूज में लेता है, क्या क्लिंटन इस क्वालिटी को यूज में लेता है, ट्रम्प इस क्वालिटी को यूज में ले रहा है, ये वही चावल है, ये वही क्वालिटी है। अच्छा उसके यहाँ, और यार, और फिर घर में लाता है और आप पड़ोस वालों को बतलाता है हम तो वो चीज
लेके आए
हम वो यूज में ले रहे हैं। आपको पता है यहाँ क्या कह रहे हैं हम? हम तुम्हें भाग्यशाली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें वो चीज दिखाई दे रही है जिस क्वालिटी का आनंद सिद्ध भगवान को हो रहा है, वो क्वालिटी का आनंद घर में बैठे हुए तुम्हें हो सकता है, वो आनंद हो सकता है। सिद्धों को जैसा आनंद, अनंत भगवान का जैसा आनंद, सीमंदर भगवान साक्षात विदेश क्षेत्र में बैठे हुए, समव शरण में बैठे हुए जिस आनंद का उपभोग कर रहे हैं, वो क्वालिटी रंच मात्र भी फर्क नहीं, उस क्वालिटी का उपभोग करने के पात्र दिखाई दे रहे हो, इसलिए हम कह रहे हैं तुम भाग्यशाली हो। अब आगे मत समझना अपने आप को, ये जिनवाणी की चर्चा कान में सुनने को पड़ी है, ये बहुत भाग्य से है रमेश भाई, बहुत भाग्य से हम बहुत भाग्यशाली हैं। एक बात कहूं, जितनी संख्या कम होती है वो उसके मूल्यवान बने को दिखाती है, जितनी संख्या कम है इसका मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा है। गोल्ड कम है तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, अरे गोल्ड की तो छोड़ो, सब्जी मार्केट में सब्जी यदि कम आ रही है कि नहीं आ रही है, बहुत कम दिख रही है, तो दाम उसके कहां से कहां पहुंच जाते हैं। सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं, कहते हैं कमी होने के कारण, हम कह रहे हैं जिसकी जितनी कमी, जिनकी संख्या जितनी कम है उनकी वैल्यू उतनी ज्यादा है। हमारे यदि शास्त्र सभा में लोग कम हैं तो चिंता की जरूरत नहीं है, अपितु ये समझने की जरूरत है कि हम बहुत ज्यादा कीमती हैं।
और मुझे मिल रहा है,
मुझे मिल रहा है, हम बहुत भाग्यशाली हैं, औरों के नसीब में नहीं है ये चीज, सबको ऐसी थोड़ी ना मिल जाएगी, ये बहुमूल्य चीज है, ये सबके नसीब में नहीं होती, जिनके भाग्य में सुखी होना लिखा होगा उन्हें ये बात मिलेगी, कैसे मिल जाएगी सबको? आप तो चाहते हो सबको मिल जाए, हमारे चाहने से क्या होता है? तीर्थंकर परमात्मा सबको समझाते चले गए लेकिन भाग्य में नहीं है तो नहीं है, क्या हुआ? दिव्य ध्वनि, उन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से कैसा काम हुआ होगा कि तूने सीखा होगा? अरे कौन जिसके भाग्य में होगा वो सुनेगा, और अभागा होगा वो समव शरण से उठ के बाहर आ जाएगा। बोलो, तो आएगी नहीं ये चर्चा? कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करेगा, 10 मिनट सुनेगा और भाग्य में नहीं होगा तो कहेगा यार जाने क्या चलता है, बंद करके चलता बनेगा। बोलो, भाग्य में होगा तो सुन पाएंगे आप, अभागे होंगे तो नहीं सुन पाएंगे। इसे लगता है बाहुबली देख ली, बहुत भाग्यशाली हूँ, हाउसफुल जा रही थी टिकट नहीं मिल रहा था, मुझे मिल गया, बहुत भाग्यशाली हूँ। क्या लोग कहते हैं यार तेरे को कैसे मिल गया टिकट, हमें तो मिला ही नहीं, हम तो 3 दिन से ट्राई कर रहे हैं, क्या तेरे को मिल गया उसका टिकट, बहुत भाग्यशाली है। अरे क्या दम है इसमें, क्या भाग्यशालीपन की बात कर रहा है, ये भाग्य की बात कर रहे हैं, कर्म बदल रहे हैं अंदर में, भाग्य बदल रहा है अंदर में, भाग्य का निर्माण हो रहा है अंदर में, पूर्वकृत बंधे हुए कर्म वर्तमान में उदय में आ रहे हैं, लेकिन वे कर्म अल्प होकर के उदय में आ रहे हैं, हल्के 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 होकर के उदय में आ रहे हैं, चिंता मत कर, एक दिन ऐसा आएगा कर्म बचेंगे ही नहीं, सिद्ध हो जाएगा, ढूंढते रह जाओगे इन कर्मों को। संक्रमण गजब चीज है, किसका संक्रमण किसमें होता है, कौन किसमें बदलता है? देखो भाई, कर्मों का संक्रमण तो जो होगा सो होगा, हम कह रहे हैं जिनवाणी की चर्चा सुनने से जीवन बदल जाता है। संक्रमण माने क्या होता है? बदलना। संक्रमण शब्द का अर्थ क्या है? बदलना। क्या बदल गया, कौन बदल गया, कैसे बदल गए? बदलना तो हमारा स्वभाव है, प्रति समय बदल रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, जीवन बदल जाए, सोच बदल जाती है, देखने का नजरिया बदल जाता है, ये सब बदल जाता है, सब में परिवर्तन हो रहे हैं, उसका नाम है संक्रमण। समझ में आ रही है बात? संक्रमण संबंधी 4 नियम है, संक्रमण किसका किसमे होता है, संक्रमण के संबंध में क्या नियम है, नियम बतलाता हूँ। पहला नियम संक्रमण का, कौन किसमे बदलेगा, कहाँ कहाँ संक्रमण नहीं होता। मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। क्या मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता? संक्रमण जानते हैं आप, संक्रमण ऐसे रोग भी है, बीमारियों को भी कहते हैं संक्रमण है? इधर उधर जो हो जाती है, बदल जाते हैं परमाणु जो शरीर के, वो संक्रमित रोग है, ये ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारण संक्रमण हो गया। ये संक्रमण मूल प्रकृतियों में नहीं होता। क्या नियम साहब मूल प्रकृतियों में नहीं होता? कुछ समझ में नहीं आया हमारे को कि ज्ञानावरणी कभी भी दर्शनावरणी में नहीं बदलेगी। मूल प्रकृति का मतलब
आठ कर्म है।
ये आठ कर्म आपस में एक दूसरे में नहीं बदलते, ठीक है। ज्ञानावरणी बंधा है तो ज्ञानावरणी ही रहेगा, वो दर्शनावरणी में मोहनी में इधर उधर नहीं बदलेगा। ज्ञानावरणी ज्ञानावरणी में रहेगा, एक काम। दूसरी चीज, दर्शन मोहनीय कभी भी चारित्र मोहनी में नहीं बदलता। चारित्र मोहनीय दर्शन मोहनी में नहीं बदलता। कषाय है, कषाय रूप से ही फल मिलेगा, कषाय रूप से उदय में आएगी, उसी में बदलेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि उसी में कम ज्यादापन हो जाए, उसी में परिवर्तन हो जाए, क्योंकि उसमें भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, ठीक है। दो हो गए। तीसरा नियम, आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। क्या आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता? मतलब
नहीं,
घटना पढ़ना तो उत्कर्षण उपकर्षण है। आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता माने आयु कर्म बदलती नहीं है। बदलती नहीं है मतलब मनुष्य आयु यदि बांधी है तो तिर्यंच नहीं होगी। नरक यदि बंध गई है तो देव नहीं हो सकती, देव बंध गई है तो तिर्यंच नहीं हो सकती। जो बंधी है वो ही रहेगी। इसका मतलब आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता, आयु कर्म बदलती नहीं है। एक बार जितने जैसी बांध ली है वो बंध गई तो बंध गई। ऐसा समझ में नहीं आया हमारे को, बंध गई तो बंध गई क्या कहना चाहते हो? फिर संक्रमण का क्या मतलब निकला? फिर स्वाध्याय करने का क्या लाभ हुआ? यदि हमने पहले मान लीजिए नरक आयु बांध ली है तो क्या बेनिफिट मिलेगा हमारे को जीवाणी पढ़ने से? फिर तो कोई लाभ ही नहीं, अब तो नरक में जाना ही पड़ेगा हमारे। यदि मान लीजिए पहले नरक आयु बांध ली है तो नरक में जाना पड़ेगा कि नहीं? जीवाणी सुनने के परिणामों से सातवें वाला पहले में आ जाता है, इसका नाम है अपकर्षण। इसे कहते हैं अपवर्तन। जीवन में किसी भी घड़ी आपकी आयु कर्म बन सकता है, किसी भी घड़ी में आयु कर्म का बंधन हो सकता है आपके। इसलिए सावधान रहो कि एक बार बंध गई तो वहां जाना तो नक्की हो जाएगा, फिर ये जिनवाणी कुछ नहीं कर पाएगी। इतना जरूर कर सकती है, उत्कर्षण भी हो सकता है, अपकर्षण भी हो सकता है, संक्रमण नहीं होता आयु कर्म में। क्या बात कह रहे हैं? जैसे मान लीजिए अभी हमने देव आयु बांध ली और मान लीजिए पांचवें स्वर्ग की आयु बांधी। अब पांचवें स्वर्ग की आयु बांधने के बाद यदि हमारे परिणाम बिगड़ गए, बदल गए, परिणाम बिगड़ गए और बदल गए तो क्या होगा? जाएगा तो स्वर्ग में ही, क्या जाएगा तो देवगति में ही, लेकिन पांचवें स्वर्ग की जगह घट करके भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में चला जाएगा, भवन त्रिक में चला जाएगा। इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा परिणाम बिगड़े तो, और परिणाम संभले तो क्या होगा? पांच से दस, पंद्रह, सोलह तक पहुंच जाएगा, सोलह तक पहुंच सकता है। इतना बड़ा काम हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास में परिणामों की इतनी बड़ी पावर है कि उन परिणामों की पावर से आप अपनी संपत्ति को घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। ये सोचता रहता है साहब महेंद्र भाई। आज यदि मैं किसी व्यक्ति को ये कहूँ ना कि मेरे पास एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से आप अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हो, और आप यदि अपनी ईमेल में ये बात डालो तो आपको मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आप यदि ये एक लाइन आ जाए बस, अपनी संपत्ति को कैसे मल्टीपल किया जा सकता है, ये फॉर्मूला बतलाने वाले हैं आज पंडित जी। क्या फिर देखो आप, इससे क्या हुआ भैया? कैसे होगी, कैसे बढ़ेगी, ये फॉर्मूला ही तो है और क्या है? ये उत्कर्षण अपकर्षण फॉर्मूला ही तो है और क्या है? आप देखो वो जो संपत्ति थी वो क्या था इन तीन में से, कल बतलाया था ना, इन तीन में से वो संपत्ति कौन सी जगह पर थी?
नौकर्म।
इन तीन में से वो संपत्ति थी नौकर्म वाली जगह पर, बराबर। ये नौकर्म किसकी वजह से था? बोले द्रव्य कर्म की वजह से। इसका मतलब द्रव्य कर्म का उदय जैसा आएगा वैसी संपत्ति मिलेगी। द्रव्य कर्म का उदय यदि असाता का उदय होगा तो संपत्ति घटेगी, द्रव्य कर्म का उदय यदि साता का होगा तो संपत्ति बढ़ेगी। अब द्रव्य कर्म का उदय, इसका मतलब आपको संपत्ति नहीं कमानी है, आपको द्रव्य कर्म कमाना है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये तो इससे आती है ना, ये कहाँ से आएगी? बोले द्रव्य कर्म से आएगी। अब ये द्रव्य कर्म माने जो पुण्य है, द्रव्य कर्म माने जो पाप का घटना है, हम उसकी विधि बतला रहे हैं आपको। तुम भाग दौड़ कर रहे हो इसके लिए, तुम्हारी सारी भाग दौड़ हो रही है इसके लिए, इसकी कंट्रोल है इसके पास में, और हम तुम्हें विधि बतला रहे हैं इसको कैसे कंट्रोल में करना जिससे ये बदल जाए। भाव वो तुम्हारे हाथ में, ये जिनवाणी सुनने से, लोभ के परिणाम से नहीं, निर्लोभी वृत्ति से। निर्लोभी वृत्ति से संपत्ति बढ़ती है, शरीर की तरफ देखने से रोग बढ़ते हैं, और शरीर से दृष्टि हटाकर गायक की तरफ देखने से शरीर निरोगी बनता है। आहार दान कराने के परिणामों से आपको जीवन में कभी आहार की कमी नहीं आएगी, ये तो है ही, छोटी सी बात है। अरे जीवन में तुम्हें आहार की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। औषध दान दिया आपने तो क्या होगा, हमें भी औषधियाँ मिल जाएगी? ये नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है। औषध दान दिया हमने, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी? अरे बहुत छोटी बात है, तुमने औषध दान दिया उसका फल तो ये, तुम्हारी बीमारी नहीं आएगी। ये चमत्कार होते हैं, ये दान के चमत्कार बतला रहा हूँ मैं। ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान है क्या महेंद्र भाई? ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान की प्राप्ति है। आप यदि ज्ञान दान देते हैं तो इसका मतलब आप अल्पकाल में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप सोचो क्या क्या काम नहीं हो रहे हैं अंदर में, हो रहे हैं। ये स्व संचालित व्यवस्था है, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अब दुकान चलानी है तो क्या करें, दुकान कैसे चलेगी? अरे साहब जैसा उदय होगा उसके हिसाब से चलेगी, इसका मतलब हमारे हिसाब से नहीं चल रही। हाँ, उदय के हिसाब से चलेगी। अब उदय कैसे सुधरेगा कि भाव सुधारो, भाव सुधारो। आप दुकान चलाने में दिमाग मत लगाओ क्या, अंदर की दुकान को देखो, शुभाशुभ भावों से जो व्यापार चल रहा है उसको देखो तो काम होगा। तो बहुत मार्मिक बातें यहाँ इस संदर्भ में कही गई है। संक्रमण के संदर्भ में मैंने आपको तीन नियम बतलाए, एक चौथा नियम और, उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है। क्या कहा? मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। एक, दर्शन मोह का चारित्र मोहनी में संक्रमण नहीं होता, चारित्र मोहनी का दर्शन मोहनी में संक्रमण नहीं होता। आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता, आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता, माने जहाँ बांध लिया है वहाँ जाना ही पड़ेगा, इसका नाम है आयु में संक्रमण नहीं होता। और कहा उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है। उत्तर प्रकृतियां माने आयु कर्म को छोड़कर बाकी सात कर्मों की जो प्रकृतियां हैं उनकी जो सब डिविजन है उनमें, उनमें आपस में एक दूसरे में बदल जाएगा। क्रोध किया था मान में बदल जाएगा, मान किया था लोभ में बदल जाएगा, साता थी, साता वेदनी नाम का कर्म वो असाता में बदल जाएगा, असाता वेदनी नाम का कर्म वो साता वेदनी में बदल जाएगा। कौन नहीं चाहता है असाता को साता में बदलना? कौन चाहता है साता को असाता में बदलना? कोई चाहता है साता असाता में बदले? मुझे मालूम है अभी सुन रहे ये जो 20 लोग जो सुन रहे हैं ना, और जो कॉन्फ्रेंस पर भी जो लोग हैं, जो लोग सुन रहे हैं, कोई नहीं चाहता है। सामने बैठे हों यदि हाथ खड़ा करवाओ मान लो, तो कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हमारी साता असाता में बदले, नहीं चाहते है ना। फिर काम क्यों कर रहे हो वैसा? वैसे काम तो ऐसे करता है कि वो उसमें कन्वर्ट हो, और चाहता ये है कि वो हमारे को साता का उदय आए। काम करता है असाता के, उदय चाहता है साता के, ऐसी अनिति तो यहाँ होगी नहीं, हमारे यहाँ जिनवाणी में ऐसा हो नहीं सकता है। असाता के काम करेगा तो असाता उदय में आएगी, साता के काम करेगा तो साता उदय में आएगी। कैसे बनता है ये सातावेदनीय कर्म, कैसे बनता है असातावेदनीय कर्म, उज्जवल परिणामों से सातावेदनीय कर्म बनता है, परिणामों की उज्ज्वलता से सातावेदनीय 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 पुण्य का ढेर। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं पुण्य के ढेर का भी तू क्या करेगा, तू तो ज्ञायक है, तू तो ज्ञायक भगवान आत्मा है, तू पुण्य के ढेर का भी क्या करेगा। ये परिवर्तन तो हो रहे हैं, संक्रमण तो हो रहा है अपने आप, लेकिन मुझे संक्रमण चाहिए नहीं। कर्म का आकर्षण तो हो रहा है, लेकिन मुझे आकर्षण का क्या करूं मैं। एक पुण्य का उत्कर्षण हो रहा है, तीव्र पुण्य का उदय आ रहा है, तीव्र पुण्य बंध रहा है, लेकिन मैं करूं क्या, मुझे क्या करना है पुण्य का, मुझे पुण्य की चाह नहीं है। वो भी छोड़ करके जाना है, ज्ञानियों को पुण्य चाह भी नहीं होती है, होती ज्ञानियों को पुण्य की चाह, क्या करेंगे बोलो। अच्छा क्यों नहीं चाहते ज्ञानी जी पुण्य की, बता दो थोड़ा सा क्यों नहीं चाहते महेंद्र भाई। पुण्य का उदय आएगा, क्या मिलेगा पुण्य के उदय में। अच्छा समझ लो आप, आपके पास में $1 million करेंसी रखी है, कैश में रखा है इतना आपके पास में, 1 million रखा हुआ है आपके पास में। खूब खर्च करते हो, दिल खोल करके खर्च नहीं होता है, खूब है करेंसी पड़ी है, बाकी संपत्ति है बहुत सारी, खर्च नहीं हो रहा है, खूब खूब काम में ले रहे हो, दान भी देते हो, अच्छे परिणाम भी करते हो। अब हमने कहा आपकी संपत्ति वो $1 million से बढ़कर सातावेदनी कर्म के उदय से $100 million हो गई। तो क्या मेरे क्या फर्क पड़ता है, एक ही नहीं बीत रहा था, मैं क्या करूंगा। बोलो आपके किस काम का हूं, हमारे किसी काम का नहीं है। आपको यदि मान लीजिए पेट भरने के लिए 2 रोटी चाहिए और घर में 200 बना दी है, तो बोले मेरे किस काम की, मुझे 2 खानी है, मेरे को काम खत्म। तो ज्ञानी जी भी ये कहता है कि ये सातावेदनी कर्म का उदय चल रहा है, अब ये सातावेदनी कर्म का उदय और ज्यादा बढ़ गया, बोले मेरे किस काम का, मेरा तो काम पहले भी चलता था, अब भी चलता है, मुझे तो ज्यादा की जरूरत है नहीं, ज्यादा की जरूरत नहीं है ज्ञानी को, इसलिए वो पुण्य को नहीं चाहते हैं। पुण्य से हो स्वर्ग, नरक निवास होवे पाप से, पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। योगसार की गाथा है 32 नंबर की, योगसार योगेंदु देव का ग्रंथ है। पुण्य से हो स्वर्ग, नरक निवास होवे पाप से, पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। इसलिए आत्म ध्यान करो, स्वर्ग चाहिए या नरक चाहिए, अरे हमें क्या फर्क पड़ता है, स्वर्ग में जाकर के भी आनंदित नहीं है और नरक में जाकर के भी खेत चिन्ह नहीं है, हमें क्या फर्क पड़ता है। टेम्परेरी रहना है हमारे को, परमानेंट तो रहना नहीं है संसार में, अपना टाइम बिताना है थोड़े समय तक, अब स्वर्ग में जाकर के बिता लो या नरक में जाकर के बिता लो, अपना टाइम पास करना है, टाइम पूरा करके हमें तो मोक्ष में जाना है, क्या फर्क पड़ रहा है आपको, क्या फर्क पड़ता है। यदि मान लीजिए सफर में थोड़ा सा तकलीफ हो तो क्या सोचता है, ये सोचता है थोड़े दिन की है, कोई बात नहीं थोड़ी देर की है। सफर की तकलीफ के बारे में क्या विचार करते हो आप, ये तकलीफ ज्यादा लंबे समय की नहीं है, ये चलने वाली नहीं है, अभी थोड़े समय में टाइम बदल जाएगा, अभी गर्मी बहुत है साहब, कोई बात नहीं घर चल के एसी में बैठेंगे नहीं है ना। तो ये जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, ये संसार दशा में नरक त्रियंचादि गतियों में अपने आप को मुसाफिरी की जैसे महसूस करता है, ये फील करता है कि मैं मुसाफिर हूँ, ये फील करता है कि मैं संसार में इधर उधर, थोड़ा सा टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, फाइनल डेस्टिनेशन तो वो है विद्यालय, अंत में तो वहां जाकर के बैठूंगा मैं, क्या करूंगा पुण्य का, छोड़ करके जाना है मेरे को तो सब। जैसे पाप छोड़ने लायक दिखता है वैसे पुण्य छोड़ने लायक दिखता है। हमें महिमा तो आती है, यद्यपि समझने की दृष्टि से पुण्य के उत्कर्षण की और पाप के अपकर्षण की महिमा दिखती है, यद्यपि समझने समझाने की दृष्टि से हमारे को पुण्य का संक्रमण हुआ, पुण्य में संक्रमण हुआ पाप का, और पाप प्रकृतियां अपकर्षित हुई और पुण्य प्रकृतियों में उत्कर्षण हुआ, तो हमें महिमा आती है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन सही बात यह है कि ये अटकने जैसा स्थान नहीं है, यहां मत अटकना भाई, क्योंकि पुण्य नहीं धर्म करो, पुण्य नहीं होना है, धर्म करने लायक है, असली करने लायक चीज तो धर्म है, वो तो इसने किया नहीं, तो धर्म की तो इसे खबर है नहीं, और ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं धर्म कर रहा हूं, सारी दुनिया पुण्य कमाने के चक्कर में उलझी है, वो पुण्य भी नहीं समझती है कैसे होता है, दुनिया ये समझ रही है मंदिर जाने से पुण्य होगा, दुनिया ये समझ रही है गरीबों की हेल्प करने से पुण्य होगा, दुनिया ये समझ रही है थोड़ा बहुत व्रत उपवास आदि करने से पुण्य होगा, दुनिया ये समझ रही है थोड़ा बहुत ये काम कर लो ना इनसे इनसे पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा, तीर्थ वंदनाएं कर लो उससे पुण्य बंधेगा। हम कह रहे हैं असली जिस क्वालिटी का पुण्य आपकी जनवाणी की चर्चा सुनने से बनता है उस क्वालिटी का पुण्य दुनिया में कहीं नहीं बनता है। मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, उस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, जिस क्वालिटी जो प्योरिटी आएगी, जो क्वालिटी आएगी आपको, जो क्वालिटी मिलेगी पुण्य की लेवल की, मतलब समझ लो आप सातावेदनी कर्म के उदय से भी आपको गाड़ी मिली है क्या? और वो सातावेदनी कर्म यदि आपको समझ लीजिए तीर्थ वंदनाओं से बंधा है तो उसके उदय से मिलने वाली आपको गाड़ी मारुति 800 मिलेगी, और जिनवाणी से वो सातावेदनी कर्म बंद करके गाड़ी मिलनी है तो मर्सिडीज मिलेगी। इतना फर्क है, दोनों फोर व्हीलर है, एक एक लाख की गाड़ी है, एक 60 लाख की गाड़ी है, बोलो कितना फर्क है? जमीन आसमान का अंतर है। 2 लाख की गाड़ी है या 2 करोड़ की गाड़ी है, कौन सी गाड़ी? दोनों है, फोर व्हील दोनों है, लेवल का फर्क है। रोटी आपको सातावेदनी कर्म के उदय से मिली, लेकिन रोटी की क्वालिटी कैसी है? ये क्वालिटी क्वालिटी इंक्रीज होती है, ये उत्कर्षण का मतलब है, क्वालिटी बढ़ जाती है। ये उत्कर्षण भी कई चीजों में होता है, ये उत्कर्षण कर्म प्रकृतियों में भी होता है, उत्कर्षण कर्म परमाणुओं में भी होता है, उत्कर्षण स्थिति बंध में भी होता है, उत्कर्षण अनुभाग बंध में भी होता है। अभी स्थिति में उत्कर्षण, अनुभाग में उत्कर्षण, इन उत्कर्षण आदि की क्या परिस्थितियां बनती है उनकी चर्चा अपन फिर आगे करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देंगे।